एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती है।
हाँ, जेरेड डायमंड की कोलैप्स, हाउ सोसाइटीज चूज टू फेल और सक्सीड, मतलब समाज कैसे असफल होते हैं या सफल होने का चुनाव करते हैं। और ये विषय मुझे लगता है आजकल बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो गया है ना।
बिल्कुल, पर्यावरण की चिंताएं, रिसोर्सेस कम हो रहे हैं, आगे क्या होगा, ये सब बातें रोज की हैं।
सही। और ये किताब सिर्फ इतिहास नहीं बताती, ये समझाती है कि क्यों कुछ समाज टिक नहीं पाए और कुछ बच गए।
और सबसे मजेदार बात यह है कि डायमंड कहते हैं कि ये काफी हद तक उनकी अपनी चॉइस थी, उनके अपने फैसलों का नतीजा। तो ये हमारे आज और कल के लिए एक बहुत बड़ा सबक है एक तरह से।
तो शुरू करते हैं लेखक से। जेरेड डायमंड ये कोई आम इतिहासकार तो है नहीं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें पॉलीमैथ कहना शायद ज्यादा सही होगा, मतलब कई विषयों के ज्ञाता हैं। तो भूगोल के प्रोफेसर, पर उनका काम फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, पक्षी विज्ञान कहां तक नहीं फैला हुआ है।
हाँ, और यही उनकी खासियत है, अलग अलग फील्ड्स को जोड़ना।
बिल्कुल। और उनकी पिछली किताब गन्स, जर्म्स एंड स्टील, उसे तो पुलित्जर मिला था। वो कमाल के सिंथेसाइजर हैं, मतलब आर्कियोलॉजी, क्लाइमेट, हिस्ट्री, इकोलॉजी, इन सबको मिलाकर एक बड़ी पिक्चर बनाते हैं।
और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, उन्होंने फील्ड वर्क भी बहुत किया है न्यू गिनी वगैरह में।
सही का, छोटे समाजों को करीब से देखा है कि वो कैसे अपने रिसोर्सेज मैनेज करते हैं। और उनकी जो साइंटिफिक समझ है वो कमाल की है। वो हजारों साल पुराने पोलन सैंपल्स को माया राजाओं के फैसलों से जोड़ सकते हैं।
वाह, मतलब वो सिर्फ क्या हुआ नहीं बताते, बल्कि क्यों हुआ की तह तक जाते हैं, पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं।
बिल्कुल, एक सिस्टम थिंकर है वो।
अच्छा, तो अब आते हैं किताब पर, कोलैप्स। इसका मेन मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ पुरानी गलतियों की लिस्ट है?
नहीं, उससे कहीं ज्यादा। ये एक तरह की इन्वेस्टिगेशन है, एक जासूसी कहानी जैसी, जिसमें डायमंड पुराने समाजों के पतन के सुराग ढूंढते हैं। पर असली मकसद आज की हमारी ग्लोबल सिविलाइजेशन के लिए सबक निकालना है, एक चेतावनी है ये,
ताकि हम वो गलतियां ना दोहराएं। और ये किताब सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर किसी के लिए है जो दुनिया के भविष्य के बारे में थोड़ा भी सोचता है, आम नागरिक, पॉलिसी मेकर, बिजनेस लीडर, सबके लिए। डायमंड हमें एक सफर पर ले जाते हैं, ईस्टर आइलैंड के वीरान नजारों से लेकर ग्रीनलैंड के खंडहरों तक,
और सफल समाजों तक भी, जैसे जापान।
हाँ, जैसे टोकोगावा जापान के जंगल।
और इस पूरी जांच के लिए वो एक फ्रेमवर्क जैसा इस्तेमाल करते हैं ना, 5 कारण गिनाते हैं जो अक्सर पतन की वजह बनते हैं।
हाँ, और ये फ्रेमवर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, डायमंड कहते हैं कि समाज के पतन के पीछे अक्सर ये 5 फैक्टर होते हैं। पहला, पर्यावरण को इंसानों का पहुंचाया नुकसान, जैसे जंगल काट देना, मिट्टी खराब कर देना। दूसरा, क्लाइमेट चेंज, मतलब मौसम में नेचुरल बदलाव। तीसरा, दुश्मन पड़ोसी, लड़ाई झगड़े का खतरा।
ठीक है।
चौथा, जो दोस्त पड़ोसी हैं उनसे सपोर्ट खत्म हो जाना, जैसे ट्रेड वगैरह रुक जाना।
हाँ, व्यापार बंद हो गया तो मुश्किल।
और पांचवा, आपने कहा था वो सबसे अहम है।
बिल्कुल, पांचवा फैक्टर है इन सारी प्रॉब्लम्स पर समाज का रिस्पॉन्स क्या होता है, समाज उन चुनौतियों से निपटता कैसे है। और यहीं पर किताब का असली मर्म है, हाउ सोसाइटीज चूज टू फेल और सक्सीड।
अच्छा, मतलब ये चुनाव की बात है। हाँ, डायमंड का तर्क है कि पतन कोई डेस्टिनी नहीं है, ये काफी हद तक समाज के फैसलों, उसकी सोच, उसके वैल्यूज पर डिपेंड करता है। इसीलिए वो तुलना करते हैं, जैसे ग्रीनलैंड के नॉर्थ और इनुइट की, या एक ही आइलैंड पर हेती और डोमिनिकन रिपब्लिक की, ये दिखाने के लिए कि एक जैसी मुश्किलों में नतीजे अलग अलग क्यों होते हैं।
ये तो बहुत दिलचस्प है, यानी सिर्फ हालात ही नहीं, हम उन पर रिएक्ट कैसे करते हैं, ये ज्यादा मायने रखता है।
चलिए कुछ उदाहरणों को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। किताब की शुरुआत थोड़ी अलग है, किसी पुरानी सभ्यता से नहीं बल्कि आज के मोंटाना से। ऐसा क्यों?
हाँ, ये डायमंड का एक बहुत स्मार्ट तरीका है ये बताने का कि जिन प्रॉब्लम्स की वो बात करेंगे वो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है। मोंटाना आज का अमेरिका है, डेवलप्ड है, लेकिन वहां भी वही इश्यूज है, माइनिंग से नुकसान, पानी पर झगड़े, मिट्टी की दिक्कतें, फॉरेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम।
मतलब वो आज से शुरू करके अतीत की तरफ ले जाते हैं। बिल्कुल, ये हमें सीधे याद दिलाता है कि कोई भी समाज, कितना भी एडवांस क्यों ना हो, इकोलॉजिकल लिमिट से बाहर नहीं है। ये आज का कॉन्टेक्स्ट सेट करता है पुरानी कहानियों के लिए।
ठीक है, तो अब चलते हैं अतीत में, ईस्टर आइलैंड, वो बड़ी बड़ी मूर्तियों वाला किस्सा तो बहुत फेमस है।
हाँ, ईस्टर आइलैंड या रापानुई, ये इकोसाइड यानी पर्यावरण की एक तरह से आत्महत्या का सबसे साफ और दुखद उदाहरण है। सोचिए, प्रशांत महासागर के बीच में दुनिया से एकदम कटा हुआ द्वीप, वहां के लोगों ने अपनी सारी एनर्जी लगा दी वो विशाल पत्थर की मूर्तियां मोआई बनाने और खड़ा करने में, और इसके लिए क्या किया, द्वीप के लगभग सारे पेड़ काट डाले।
और उसका नतीजा, पेड़ नहीं तो
मिट्टी बह गई, खेती बर्बाद, नाव बनाने को लकड़ी नहीं बची, तो समंदर से खाना मिलना बंद, बाहरी दुनिया से कांटेक्ट खत्म, धीरे धीरे खाने की कमी, लड़ाइयां और आखिर में भूखमरी और कैनिबलिज्म तक की नौबत आ गई। समाज ही कोलैप्स कर गया।
ओह, करते हैं नॉर्स यानी वाइकिंग लोग और वहां के नेटिव इनोट लोग।
हाँ, और ये कहानी दिखाती है कि सिर्फ पर्यावरण नहीं, आपकी संस्कृति, आपकी सोच कितनी मायने रखती है। नॉर्स लोग यूरोप से आए थे, ग्रीनलैंड में सेटल हुए, लेकिन वो अपनी यूरोपियन लाइफस्टाइल बदलने को तैयार नहीं थे।
मतलब वहाँ भी खेती करने लगे?
हाँ, गाय बैल पालने की कोशिश की, जिससे वहाँ की नाजुक टॉप सॉइल और खराब हो गई। भारी पत्थर के चर्च बनाए, अपना यूरोपियन सोशल स्ट्रक्चर बनाए रखा।
और जो लोग वहाँ पहले से रह रहे थे इनुइट, उनसे कुछ नहीं सीखा?
यही तो, ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वो इनुइट को नीची नजर से देखते थे, सैविज समझते थे, और उनसे वो टेक्निक सीखने से इनकार कर दिया जो उस आर्कटिक माहौल के लिए कहीं बेहतर थी, जैसे सील का शिकार कैसे करें या कश्ती, कयाक और हार्पून का इस्तेमाल।
अच्छा, तो जब मौसम बदला?
बिल्कुल, जब लिटिल आइस एज आई, मौसम और ठंडा हुआ, तो नॉर्स लोगों का एग्रीकल्चर बेस खत्म हो गया, यूरोप से सप्लाई लाइंस कट गईं,
और वो धीरे धीरे
भुखमरी से खत्म हो गए, अपनी उस कल्चरल आइडेंटिटी से चिपके रहे जो उनके नए घर में उनके लिए घातक साबित हुई।
जबकि इनुइट लोग वहीं रहे, फले फूले।
हाँ, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल और टेक्नोलॉजी उस माहौल के लिए परफेक्टली अडेप्टेड थी। ये कहानी साफ दिखाती है कि मुश्किल हालात में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, नई चीजें सीखने की इच्छा, अपनी सोच पर सवाल उठाने की हिम्मत, यही तय करती है कि आप बचेंगे या मिटेंगे। नॉर्स ने फेल होने का चुनाव किया, इनुइट ने सफल होने का।
लेकिन जैसा आपने कहा, डायमंड सिर्फ फेलियर की कहानियां नहीं सुनाते, वो सफल समाजों के उदाहरण भी देते हैं। ये जानना भी जरूरी है थोड़ी उम्मीद के लिए।
हाँ बिल्कुल, नहीं तो लगेगा कि अंत तो विनाशी है। वो टिकोपिया जैसे छोटे पैसिफिक आइलैंड का उदाहरण देते हैं, वहां बॉटम अप गवर्नेंस थी, मतलब पूरी कम्युनिटी ने मिलकर जनसंख्या कंट्रोल और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के सख्त नियम बनाए और माने, क्योंकि वो जानते थे उनके रिसोर्स लिमिटेड हैं।
और बड़े समाजों में कोई सफलता का उदाहरण, जापान का आपने जिक्र किया था।
हाँ, टोकुगावा पीरियड का जापान, 17वीं-19वीं सदी, ये टॉप डाउन सक्सेस का केस है, मतलब ऊपर से लागू की गई सफलता। जापान में भी जंगलों की जबरदस्त कटाई से संकट आया था।
अच्छा।
हाँ, लेकिन वहां के शासकों, शोगुन ने प्रॉब्लम को समझा और कड़े कदम उठाए, पूरे देश में फॉरेस्ट मैनेजमेंट की पॉलिसी लागू की, लकड़ी की राशनिंग की, बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए। ये दिखाता है कि बड़े कॉम्प्लेक्स समाज भी, अगर पॉलिटिकल विल हो, तो पर्यावरण की सीरियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।
और इन सब पुरानी कहानियों को वो आज से भी जोड़ते हैं। हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक वाला उदाहरण तो एकदम सीधा है।
बिल्कुल सीधा, एक ही आइलैंड हिस्पैनियोला, लगभग एक जैसा भूगोल, लेकिन दो बिल्कुल अलग रास्ते, अलग नतीजे। हैती ने अपने जंगल लगभग पूरे खत्म कर दिए, नतीजा भयानक गरीबी, इकोलॉजिकल डेवेस्टेशन।
और डोमिनिकन रिपब्लिक,
उन्होंने थोड़ी बेहतर पॉलिसी अपनाई, अपने जंगलों को कुछ हद तक बचाया, आज वो हैती से कहीं बेहतर हालत में है। यह सीधे सीधे दिखाता है कि आपके चॉइसेस कितने अलग रिजल्ट ला सकते हैं, सेम सिचुएशन में भी।
वो रवांडा के जेनोसाइड को भी लैंड प्रेशर से जोड़ते हैं, और चीन, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों की आज की चुनौतियों की भी बात करते हैं।
हाँ, रवांडा का उदाहरण दिखाता है कि कैसे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, जैसे जमीन की कमी, पॉपुलेशन प्रेशर, ये सब सोशल और पॉलिटिकल टेंशन को बढ़ा सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट तक ले जा सकते हैं। और चीन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश दिखाते हैं कि मॉडर्न डेवलपमेंट के साथ पानी की कमी, पॉल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन जैसी बड़ी चुनौतियां आती हैं, जिनसे निपटना ही होगा। ये सब आज के लिए डायरेक्ट लेसन है।
तो इस पूरी किताब से और इस चर्चा से वो कौन से मेन थीम्स या मैसेजेस हैं जो हमें लेके जाने चाहिए?
देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी पॉइंट तो वही है, समाज का रिस्पांस डिसाइसिव होता है। माहौल मुश्किलें खड़ी करता है, हाँ, लेकिन समाज उन पे रिएक्ट कैसे करता है, ये उसका भविष्य तय करता है। ये हमारी अपनी एजेंसी पर, हमारे चुनाव करने की ताकत पर जोर देता है। हम सिर्फ विक्टिम नहीं हैं, हम चुन सकते हैं।
और कई बार समाज जानते बूझते भी गलत रास्ते पर क्यों चल पड़ता है, इसके बारे में भी डायमंड कुछ कहते हैं।
हाँ, वो दो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, क्रीपिंग नॉर्मलसी और लैंडस्केप एमनीजिया।
क्रीपिंग नॉर्मलसी मतलब धीरे धीरे होने वाला बदलाव।
हाँ, जब बदलाव बहुत धीरे धीरे होता है तो हम उसके इतने आदि हो जाते हैं कि हमें खतरा दिखता ही नहीं। जैसे शहर में ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ता है, हवा खराब होती जाती, हमें लगता है अरे ये तो नॉर्मल है। वो मेंढक वाली कहानी है ना, जो धीरे धीरे गर्म होते पानी में बैठा रहता है और उबल जाता है, वैसा ही कुछ।
और लैंडस्केप एमनेशिया ये क्या है?
इसका मतलब है कि हर नई पीढ़ी अपने आसपास के बिगड़े हुए माहौल को एक बेसलाइन मान लेती है। उसे लगता है दुनिया हमेशा से ऐसी ही थी, उसने पहले का बेहतर वक्त देखा ही नहीं। ये दोनों चीजें मिलकर समाजों को अनजाने में पतन की ओर धकेल सकती हैं। हर छोटा कदम उस वक्त लॉजिकल लगता है, पर लॉन्ग टर्म में नतीजा भयानक हो सकता है।
इसमें जो पावरफुल लोग हैं, एलीट क्लास, उनकी भूमिका भी अहम होती होगी।
बिल्कुल, डायमंड का एक बहुत अहम पॉइंट ये है कि जब फैसले लेने वाले लोग, राजा, नेता, कॉरपोरेट लीडर, अपने फैसलों के बुरे नतीजों से खुद को बचा पाते हैं, इंसुलेट कर लेते हैं, तो गलत फैसले होने का चांस बढ़ जाता है।
मतलब अगर उन पर असर नहीं पड़ेगा तो वो शायद परवाह नहीं करेंगे।
एग्जैक्टली। अगर उन्हें लगता है कि जंगल काटने या नदी गंदी करने का असर उन तक नहीं पहुंचेगा, तो वो शायद शॉर्ट टर्म फायदे के लिए वो करते रहेंगे। ये समाज के अंदर अलग अलग ग्रुप्स के इंटरेस्ट का टकराव दिखाता है। सवाल ये है कि पूरे समाज की भलाई कौन देखेगा।
और आखिर में ये भी कि हर पर्यावरण की अपनी एक लिमिट होती है, एक नाजुकता होती है।
हाँ, कोई भी एनवायरमेंट इन्फिनिट बोझ नहीं सह सकता। हर जगह की अपनी कमजोरियां होती हैं, जैसे ईस्टर आइलैंड की पतली मिट्टी। समाजों को यह समझना होगा और अपनी एक्टिविटीज को उसके हिसाब से ढालना होगा। पर्यावरण को फॉर ग्रांटेड लेना महंगा पड़ता है।
इस किताब में यकीनन कई ऐसी बातें होंगी जो दिमाग में अटक जाती हैं। कुछ खास कोट्स या आइडियाज जो आप शेयर करना चाहें?
हाँ, कई हैं। मतलब सीधे कोट नहीं, पर उनके विचारों का सार देखें तो।
जैसे एक ये कि सक्सेस या फेलियर इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना लॉन्ग टर्म सोचते हैं और क्या आप अपनी बेसिक मान्यताओं पर सवाल उठाने को तैयार हैं। और यही मुद्दे आज हमारी दुनिया की प्रॉब्लम्स के भी सेंटर में हैं।
बिल्कुल, इसका मतलब है दूर की सोचना और फ्लेक्सिबल होना। क्या हमारे जो कोर वैल्यूज हैं वो हमारी मदद कर रहे हैं या हमें पीछे खींच रहे हैं? जरूरत पड़ने पर क्या हम बदलने को तैयार हैं?
ईस्टर आइलैंड वाला वो विचार भी बड़ा पावरफुल है। उस आदमी ने क्या सोचा होगा जिसने आखिरी पेड़ काटा? वो पागल नहीं था, वो अपने समाज के नियमों के हिसाब से ही लॉजिकल काम कर रहा था।
ये वही क्रीपिंग नॉर्मैलिटी का निचोड़ है। कैसे पूरा समाज धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, जानते बूझते हुए भी तबाही की तरफ जा सकता है, क्योंकि हर एक कदम उस वक्त ठीक लगता है। ये दिखाता है कि कलेक्टिव डिजास्टर अक्सर इंडिविजुअल रैशनल डिसीजंस का नतीजा होता है।
और लीडर्स या एलीट क्लास की जिम्मेदारी पर यह बात, अगर वो खुद को अपने कामों के नतीजों से बचा सकते हैं तो वो अक्सर अपने शॉर्ट टर्म फायदे को ही देखेंगे।
ये फिर से वही बात है, पावर और अकाउंटेबिलिटी के बीच गैप। जब जवाबदेही नहीं होती तो पूरे समाज के भले की बजाय अपने या अपने ग्रुप के फायदे को देखना आसान हो जाता है। यह हमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत याद दिलाता है।
लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, डायमंड पूरी तरह निराशावादी नहीं है। वो ये भी कहते हैं, हम पहली पीढ़ी हैं जो अतीत से सीख सकते हैं। ये ज्ञान हमें सतर्क आशावाद देता है।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। उनका मानना है कि आज हमारे पास साइंस, हिस्ट्री, कम्युनिकेशन के ऐसे टूल्स हैं जो पहले किसी समाज के पास नहीं थे। हम समझ सकते हैं कि अतीत में क्या गलत हुआ। ये नॉलेज हमें एक मौका देती है, बल्कि एक जिम्मेदारी देती है कि हम बेहतर चुनाव करें। सतर्क आशावाद मतलब उम्मीद है, पर हमें सावधान रहना होगा।
तो ये सब बातें, ये बड़े बड़े आइडियाज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू होते हैं?
कई तरह से। अपने लेवल पे देखें तो अपने आसपास उस क्रीपिंग नॉर्मैलिटी के प्रति जागरूक होना। क्या हमारे शहर में हरियाली कम हो रही है? क्या हवा वाकई खराब हो रही है? इन पर ध्यान देना।
और फिर
हम अपनी लाइफस्टाइल में छोटे बदलाव ला सकते हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट कर सकते हैं, कम्युनिटी लेवल पे कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे टिकोपिया ने दिखाया, कम्युनिटी एक्शन काम करता है।
और नेशनल लेवल पर, देश के स्तर पर,
और हम सोच सकते हैं कि हमारे देश में लॉन्ग टर्म पॉलिसीज क्या हैं, पानी को लेकर, जंगलों को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, क्या वो दूर की सोच पर आधारित हैं? हेती और डोमिनिकन रिपब्लिक का उदाहरण याद दिलाता है कि गवर्नमेंट के फैसले कितने मायने रखते हैं। हम इन्फॉर्म्ड वोटिंग कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, और बिजनेस की दुनिया के लिए भी इसमें सीधा मैसेज है। सिर्फ क्वार्टरली प्रॉफिट से आगे देखना होगा। जो बिजनेस मॉडल नेचुरल रिसोर्सेज को बुरी तरह एक्सप्लॉइट करते हैं, वो शायद लॉन्ग रन में सस्टेनेबल ना हो। अब सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक अच्छी बात नहीं, एक स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटजी भी है।
और ग्लोबल लेवल पर पूरी दुनिया के लिए।
आज तो हम सब इंटरकनेक्टेड हैं, कहीं एक जगह जंगल कटते हैं तो उसका असर पूरी दुनिया के क्लाइमेट पर पड़ता है। क्लाइमेट चेंज किसी एक देश की प्रॉब्लम नहीं है, तो एनवायरमेंटल इशू पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन अब लग्जरी नहीं, जरूरत है। ये किताब ये भी दिखाती है कि कैसे एनवायरमेंटल स्ट्रेस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा सकता है।
तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? एक मुख्य बात जो श्रोताओं को याद रखनी चाहिए।
मेरे लिए सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि इतिहास सिर्फ कहानियां नहीं है, ये हमारे फ्यूचर के लिए डेटा है, लेसन्स हैं। और पर्यावरण को संभालना ये कोई साइड इशू नहीं है, ये सोशल स्टेबिलिटी के लिए सेंट्रल है। हम सब एक तरह से एक ही बड़े ईस्टर आइलैंड पर रह रहे हैं और हमें इसे मिलकर संभालना होगा।
हाँ, और मेरी तरफ से एक फाइनल थॉट ये है कि ये किताब एक वार्निंग जरूर है, पर ये उम्मीद भी देती है। डायमंड का कोर मैसेज यही है कि कोलैप्स हमारी डेस्टिनी नहीं है, ये एक चॉइस है। हमारे पास नॉलेज है, रिसोर्सेज हैं। सवाल यह है कि क्या हम कलेक्टिवली सही चॉइस करने की विजडम और हिम्मत दिखाएंगे?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।